पुत्रेति तन। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित यह बुधवारी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। यहाँ पर ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम हम श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद्भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 20वें श्लोक में हम चर्चा कर रहे थे, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अति मर्त्यानि भगवान गुड्ढ कपट मानुष। भगवान अनंत है, भगवान की लीला अनंत है, और वे अनंत भगवान जब अपनी लीला करते हैं तो इस संसार के लोग उसे पहचान नहीं सकते। क्यों नहीं पहचान सकते हैं? 88,000 ऋषि मुनि कहते हैं क्योंकि वे भगवान गुड्ढ कपट मानुष, ये भगवान मनुष्य का रूप धारण करते हैं और मनुष्य का रूप भी गुड्ढ रूप से धारण करते हैं। आपके श्लोक में दिया है भगवान गुढ़ाती गुढ़ी लीला करते हैं और बड़े बड़े लोग भी इसे नहीं समझ सकते। हम मनुष्य की बात तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े देवतागण भी भगवान को पहचानने में धोखा खा जाते हैं। आज से 5,000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर आए थे और अपनी लीला के दरमियान प्रतिदिन गैया और बछड़े को चराने के लिए वन में जाते थे। प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण का यह नित्य क्रम था और जब दोपहर का समय होता था, भूख लगती थी, तो सभी कृष्ण और सभी गोप ग्वाल साथ में मिलकर प्रसाद ग्रहण किया करते थे। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में बहुत ही विस्तृत रूप में यह लीला वर्णन हुई है। भगवान श्री कृष्ण के साथ कई सारे गोप ग्वाल सखाए प्रसाद ग्रहण करते थे। प्रसाद ग्रहण करने में भी कभी कभी कृष्ण को बहुत परेशान किया करते थे। सब लोग कृष्ण बीच में बैठते थे और जितने भी गोप ग्वाल सखाए आजू बाजू में बैठ जाते थे और अपनी अपनी मैया ने जो भी कुछ प्रसाद दिया है वो एक पोटली से खोलकर निकाल कर खाते थे। हमारी तरह कोई थाली नहीं रखते थे या पत्थर लेकर नहीं चलते थे। भगवान भी जब प्रसाद खाते हैं तो इस पृथ्वी के ऊपर माता पृथ्वी ने जो पदार्थ दिए हैं, जो बर्तन दिए हैं, उस पर भोजन ग्रहण करते थे। सब लोग जिस जिस जगह पर बैठते थे पृथ्वी को साफ करके, धरती को साफ करके, एक छोटा सा खड्डा बनाकर या पत्थर के ऊपर बैठकर रखकर प्रसाद लेते थे। भगवान श्री कृष्ण जिस जगह पर प्रसाद लिए हैं वे जगह आज भी मौजूद हैं। हम जब दिवाली के समय पर वृंदावन धाम में जाते हैं तो इस जगह पर अवश्य हम जाते हैं, जिसे भोजन स्थली कहा जाता है। इस स्थल को भोजन, आज भी कृष्ण ने जिस जगह पर भोजन किया था 5,000 वर्ष पहले, वह जगह आज भी है। आप देखेंगे बहुत ही बड़ी एक पत्थर है और उस पत्थर में बहुत ही बड़ी थाली है और जैसे कटोरा होता है वैसे बहुत ही बड़ा खड्डा है, उसमें भगवान कृष्ण रख कर खाते थे। तो कृष्ण के साथ कई सारे गोप ग्वाल सखा प्रसाद ग्रहण करते थे। प्रसाद ग्रहण करते करते कोई सखा कहता था, कृष्ण देखो मेरी मैया ने बहुत ही सुंदर आचार भेजा है। तो आचार को ऐसे हाथ में लगाकर, पांच प्रकार के आचार एक एक उंगली पर दूसरी उंगली पर ऐसे लगाते थे और खाते चूसते थे। कृष्ण को कहते देखो मेरी मैया ने बहुत ही सुंदर आचार बनाए। तो कृष्ण कहते थे अच्छा अच्छा मुझे भी खिलाओ। तो जैसे ही वह कृष्ण के मुख में आचार देने जाते और कृष्ण जैसे उसे खाने का प्रयास करते तुरंत वो अपने कृष्ण के मुख से निकाल लेते, और इस प्रकार से सब लोग एक साथ ताली बजाकर हंसने लगते। तो कृष्ण के साथ परम परमेश्वर जो त्रिभुवन के नाथ है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो स्वामी है, उसके साथ कृष्ण के जो सखा है इस प्रकार से लीला करते हैं। और भी कई लोग कहते हैं कृष्ण मेरी मैया ने बहुत ही सुंदर छाछ भेजी है, पहले पीते थे छाछ, बहुत ही सुंदर छाछ है, लो कृष्ण तुम भी पियो, तो उसका जूठन कृष्ण पीते थे। तो इस प्रकार से कृष्ण का जूठा और कोई खाते थे, दूसरे का जूठन कृष्ण खाते थे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन वृंदावन में लीला करते थे। तो एक समय की बात है, ब्रह्मा जी अपने धाम में ब्रह्म लोक में रहते थे। ये कौन ब्रह्मा है? जिस ब्रह्मा को भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम सर्वप्रथम ज्ञान दिया था। इसी भागवतम के प्रथम श्लोक में आया है, जन्मा दस यतोन आदि तरत चार्थेशु विज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत सूर्य। जिस भगवान ने ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम डायरेक्ट हृदय में ज्ञान प्रदान किया, वह ब्रह्मा अपने धाम में बैठकर सोचने लगे कि चलो जाकर देखूं भगवान ने इस समय इस धरा धाम पर पृथ्वी पर जन्म लिया है, तो जाकर हम भी भगवान की लीला का आस्वादन करें। ब्रह्मा जी आए ब्रह्मलोक से उतर कर इस पृथ्वी पर, और वृंदावन में आकर जब आकाश में खड़े थे, देख रहे थे किस प्रकार से कृष्ण और सब लोग आपस में भोजन प्रसाद खा रहे हैं। तो कोई कृष्ण को खिला रहा है, कोई कृष्ण को अपना जूठा खिला रहा है, कृष्ण अपना जूठा दूसरे को खिला रहे हैं। इस प्रकार से कृष्ण के साथ लोग मजाक मस्ती कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगा ये भगवान हो सकते हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा मन ही मन में, वास्तव में ये ग्वाला ये बालक भगवान नहीं हो सकता है। कुछ लोग भले इसे भगवान माने लेकिन ये भगवान नहीं है। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी जो जगत के नाथ है जगन्नाथ, वे और कोई साधारण बालक का जूठन खाएंगे? ये कभी संभव ही नहीं। ब्रह्मा जी के मन में संशय हुआ तो ब्रह्मा जी ने सोचा चलो परीक्षा लेकर देख लो। इस संसार में जो लोग भगवान की परीक्षा लेना चाहते हैं वे बहुत दुखी होते हैं। सती मोह प्रसंग में भी आप देखेंगे किस प्रकार जगत जननी माता पार्वती सती भगवान की परीक्षा लेने के बाद पछताई दुखी हुई, यहां तक अपना शरीर त्यागना पड़ा। ब्रह्मा जी भी यहां पर परीक्षा लेने की सोच रहे हैं कि चलो देखूं ये भगवान है कि नहीं। इस संसार में भी कई लोग परीक्षा लेते हैं भगवान की, क्या ये सच्चे भगवान है या झूठे भगवान है। जो भगवान इस संसार के सभी जीवों की परीक्षा लेते हैं, यह तुच्छ जीव भगवान की परीक्षा लेने चलता है। शास्त्र में जो लिखा है वह सनातन सत्य है, इस पर विश्वास रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, इसमें परीक्षा नहीं होनी चाहिए। कुछ कुछ श्रोतागण देखे गए हैं, वक्ता जब कुछ कथा कहते हैं कुछ सिद्धांत सुनाते हैं तो सुनने वाले श्रोता भी कभी कभी उस बात को अपनी बुद्धि से तौलते हैं, प्रभु जी इतना बोले हैं तो इतना सही है और इतना गलत है, क्या ऐसा हो सकता है? प्रभु जी तो कह रहे थे प्रवचन में, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? संशय करते हैं अपने मन में। लेकिन वास्तव में भगवान की लीला में संशय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान की लीला परम पवित्र और विशुद्ध है, भगवान तीनों गुणों से परे है, इसलिए भगवान हम जो कल्पना भी नहीं कर सकते वह कार्य भगवान करते हैं। ब्रह्मा जी संसार के प्रथम जीव ब्रह्मा जी भगवान की लीला को देखकर विस्मित हो गए। आप सबको ध्यान याद रखना चाहिए, मैं यह गूढ़ कपट मानुष शब्द पर बोल रहा हूं। 88,000 ऋषि मुनि कह रहे हैं कि भगवान की लीला कैसी है, तो कहते हैं गूढ़ कपट मानुष्य, मनुष्य का वेश धारण करके गूढ़ गूढ़ लीला करते हैं जिसे बड़े बड़े लोग भी पहचान नहीं सकते। तो यहाँ पर बड़े लोग में अब सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है इस संसार में? ब्रह्मा जी से बड़ा कोई है? जिस ब्रह्मा जी ने इस संसार की सृष्टि की है, 84 लाख की योनि के डिजाइनर ब्रह्मा जी है, इस संसार के सबसे प्रथम जीव है ब्रह्मा जी, इससे बड़ा कौन है? ऐसे ब्रह्मा भी भगवान की लीला को देखकर विस्मित हो गए। भगवान की लीला की परीक्षा लेने चले, क्या ये भगवान है कि नहीं। परीक्षा लेने के लिए क्या किया, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले कृष्ण और जितने भी सखा ग्वाल बाल थे प्रसाद ले रहे थे, और गैया तो अपने आप चर रही थी। ब्रह्मा जी आए उतरे और सभी गैया को चुरा कर उस गैया को लेकर अपने धाम ब्रह्मलोक में चले गए। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में चले गए गैया को लेकर। अब कुछ सखाओं की दृष्टि गई कि कृष्ण हम यहाँ पर मस्ती से प्रसाद तो ले रहे हैं लेकिन गैया नहीं दिख रही है। तो कुछ ग्वाल बाल ने कहा कि चलो मैं देख कर आता हूँ। कृष्ण ने कहा तुम सब लोग बैठो, मैं देख कर आता हूँ कहाँ पर गैया चली गई। अब कृष्ण तो लीडर हैं, क्योंकि इसके पहले भी कृष्ण कितने लोगों का वध कर चुके हैं। तो सब ग्वाल बाल ने कहा कि ठीक है कृष्ण, तुम देख कर आओ, हम लोग यहाँ पर मस्ती से प्रसाद लेंगे। अब कृष्ण को भी लीला करनी थी, कृष्ण तो चले गैया को ढूंढने के लिए। जो सर्वज्ञ है, सभी जीवों के हृदय में स्थित है, वह जान लिए थे कि ये करतूत मेरे पुत्र ब्रह्मा की है। फिर भी वह लीला करते हुए वहां से चले, और चले ब्रह्मा जी गैया को रखकर फिर नीचे आए, और नीचे आकर कृष्ण तो बहुत दूर चले गए थे गैया को ढूंढने के लिए, और ब्रह्मा जी कृष्ण के सखाओं को चुरा कर भी लेकर चले गए। और यहाँ पर कृष्ण जब वापस आए तो देखा तो हमारे कोई सखा भी नहीं है। तब देखे कृष्ण जैसे ही देखा कि गैया भी चली गई सखा भी चले गए, कृष्ण रोने लगे। लेकिन तुरंत ही कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य प्रकट किया, और ब्रह्मा जी जितनी जितनी गैया और बछड़े को लेकर गए थे, जितने जितने ग्वाल सखा को लेकर गए थे, उतने ही एज इट इज भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर से अंशों को प्रकट करके उतनी ही गैया उतने ही बछड़े और उतने ही सखा प्रकट कर दिए। और बिना कोई रुकावट के जैसे भगवान की लीला प्रतिदिन चलती थी, प्रसाद लिए भोजन किए गैया को चराए, और जब समय खत्म हुआ तब सब लोग वापस लौट गए। ब्रह्मा जी के धाम में भी गाय बछड़े और सखा है, और यहाँ पर कृष्ण के साथ भी हैं। कृष्ण के साथ जो है वो कृष्ण ने प्रकट किए हैं, जो करोड़ों करोड़ों जीवों को प्रकट करते हैं, वो कुछ गैया को और कुछ सखाओं को प्रकट कर दिए। कौन सी बड़ी आश्चर्य की बात, प्रकट कर दिया कृष्ण ने और गए। यहाँ पर एक प्रश्न का समाधान आपको मिल सकता है। कुछ लोगों को लगता है कि कृष्ण, हम जब कृष्ण का विग्रह देखते हैं तो उनके साथ राधा जी की तस्वीर क्यों होती है। वास्तव में कृष्ण की पत्नी तो रुक्मणी जी है, सत्यभामा 16108 है, लेकिन राधा जी की का अर्च विग्रह क्यों रखते हैं। लेकिन वास्तव में जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी सब ग्वाल बाल और सखा को लेकर चले गए, तब यहाँ पर गर्गाचार्य जी ने देखा कि अब कृष्ण ही, ये सब के घरों में कृष्ण ही अपना रूप लेकर सब ग्वाल बाल सखा बन चुके। तो गर्गाचार्य ने कहा कि ये जो समय है विवाह करने के लिए बहुत योग्य समय है, और है वृंदावन के वासियों, तुम अपनी अपनी लड़कियों का विवाह यहाँ पर रहने वाले ग्वाल बाल सखा के साथ कर दो, क्योंकि ये बहुत योग्य समय है। वास्तव में जितने भी ग्वाल बाल सखा थे और कोई नहीं, वो कृष्ण ही थे, और जिसके घर पे जो ग्वाल बाल सखा थे वास्तविक वो तो ब्रह्मा जी के पास थे। गर्गाचार्य जी ने कहा अगर तुम्हारे घर पे अच्छा दिन है तो आज ही तुरंत अभी उसका विवाह करवा दो जितनी जितनी लड़की है। तो सब लोग गर्गाचार्य जी की बात को तो मानते थे, क्योंकि वो बहुत बड़े पुरोहित थे, आचार्य थे। सब लोग ने विवाह रचा, और जितने भी कृष्ण के सखा थे उनका विवाह वहां पर रहने वाली गोपियों के साथ करवा दिया गया। इसका अर्थ हुआ कृष्ण के साथ ही सबका विवाह हुआ, इसलिए कृष्ण को यह दोष नहीं है कि उन्होंने गोपियों के साथ क्यों लीला की, क्यों रास लीला खेले। वह जितनी भी गोपियां हैं कृष्ण की ही पत्नी है वास्तविक। खैर ये तो एक अलग टॉपिक, अलग प्रश्न का उत्तर मैं आपको दिया। लेकिन एक साल तक ब्रह्मा जी उस बछड़े को और सखाओं को रखे, यहां पर एक साल तक यह लीला चलती रही। ब्रह्मा जी एक साल के बाद आकर देखे कि चलो देख कर आता हूँ, कृष्ण तो अकेले अकेले गैया चराते होंगे, कोई नहीं होगा। ब्रह्मा जी आकर देखे तो वही है, जितने बछड़े थे, जितनी गैया थी, जितने सखा थे, वैसे ही सखा यहाँ पर मौजूद हैं और सब लोग कृष्ण के साथ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को यह देखकर बहुत विस्मित हुआ, बहुत विस्मय में पड़ गए। और सबसे पहले ब्रह्मा जी को बहुत बड़ा पछतावा हुआ, अरे बाप रे बाप, वास्तव में ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात भगवान परब्रह्म कृष्ण ही है। और उन्होंने ही अपनी शक्ति को प्रकट करके मैं जिस बछड़े को और ग्वाल बाल सखा को लेकर गया हूँ उसे प्रकट किए। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो निश्चित हो गया कि यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन दुख की बात, अफसोस की बात यह है कि कृष्ण को मैंने परेशान किया, कृष्ण की परीक्षा ली। ब्रह्मा जी के हृदय में बहुत बड़ा संदेह संशय उत्पन्न हुआ, इसलिए अब ब्रह्मा जी कृष्ण से माफी मांगने के लिए कृष्ण के पास गए और कृष्ण के पास जाकर अष्टांग प्रणाम करके कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। बस सब ग्वाल बाल सखा देख रहे हैं कि एक पहाड़ जैसा ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का शरीर मनुष्य की तुलना में बहुत बड़ा है, एक पहाड़ जैसा चार मुख वाला एक छोटे से बालक कृष्ण को प्रणाम क्यों कर रहा है। लेकिन वास्तव में यह बालक कोई छोटा नहीं है, एक आचार्य तो लिखते हैं ये साधारण बालक मत समझो, ये कौन सा बालक है, कहते हैं बाले बाले ब्रह्मा प्रकटे, यह ऐसा बालक है कि इसके एक एक बाल में, एक एक रोमकूप में अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड और ब्रह्मा प्रकट होते हैं, ये ऐसा बालक है, साधारण बालक नहीं है। ब्रह्मा जी ने देखा ये साधारण नहीं है, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, बहुत ही सुंदर स्तुति श्रीमद् भागवतम में है, नो मियते ब्रह्म पुषेत विडम्बराय गुंजा वसन परिपिच्छ लसन मुखाय रम्यास्त्रजे कवल वेत्र विशान वेणु लक्ष्मणश्री मृदुपते पशुपंगजाय। बहुत सुंदर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, लेकिन भगवान नहीं माने। अब देखिए इसी ब्रह्मा जी की तरह ही इंद्र को भी संशय हो गया था कृष्ण के ऊपर, और कृष्ण के ऊपर संशय होने पर इंद्र ने बहुत बहुत बारिश बरसाई थी, सामवर्तक मेघ, और उसके कारण भगवान को गोवर्धन धारण करना पड़ा। और गोवर्धन धारण करके इंद्र को जब पता चला कि यह साधारण व्यक्ति नहीं है, यह साक्षात परब्रह्म कृष्ण है, तब इंद्र भगवान को प्रणाम किए और प्रणाम करने के तुरंत ही भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। लेकिन यहां पर ब्रह्मा जी 20 श्लोक में भगवान की स्तुति किए, जितना भी स्तुति और प्रार्थना में जितनी भी बातें आती हैं सब कुछ कह दी, लेकिन फिर भी भगवान नहीं माने। ब्रह्मा जी ने यहां तक कह दिया कि हे कृष्ण, वास्तव में आप इस संसार के सभी जीवों के पिता हो, माता हो, सभी जीवों के जननी हो, क्योंकि यह सभी जीव आपके आपसे जन्म लिए हैं। और भगवान इस संसार में एक साधारण माँ को भी देखा गया है कि एक छोटा सा बालक माँ के गोद में रहता है, उस माँ से ही दूध पीता है, पलता है, बड़ा होता है, और कभी कभी वह बालक अपनी माँ को ही लात से मार देता है, तो क्या वह माँ उस बालक को फेंक देती है, छोड़ देती है। ठीक उसी प्रकार है भगवंत, है प्रभु, हम आपके पुत्र हैं, आपके ही अंश हैं, कभी कभी हमसे भूल भी हो जाए, अपराध भी हो जाए, तो हमें क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने बहुत बहुत कृष्ण को मनाया, लेकिन फिर भी भगवान नहीं माने। वहां पर इंद्र ने प्रार्थना की तो भगवान तुरंत मान गए, यहाँ पर ब्रह्मा जी बहुत बहुत प्रार्थना किए लेकिन भगवान नहीं माने। भक्तों कारण एक ही था, इंद्र ने वर्षा करके भगवान ने गोवर्धन हाथ में उठाया और व्रज के सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के पास उस गोवर्धन के नीचे आ गए। भले इंद्र ने अपराध किया, लेकिन उस अपराध के कारण व्रज के जितने भी लोग थे भगवान के करीब आ गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने ऐसा अपराध किया है कि इस अपराध के कारण भगवान के जो भक्त हैं भगवान से अलग कर दिए। वास्तव में इस संसार में सबसे बड़ा अपराध अगर कोई है तो एक भक्त को भगवान से अलग करना। ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ा अपराध किया था भगवान के भक्त को, कृष्ण के सखा को, ब्रह्मा जी ने कृष्ण से अलग कर दिया था, इसलिए कृष्ण नहीं माने। तात्पर्य यह है कि भगवान की ऐसी ऐसी लीला है, कृष्ण ऐसी ऐसी लीला करते हैं, गूढ़ कपट मानुष, इतनी गूढ़ लीला करते हैं, इतने कपट भरी मनुष्य लीला करते हैं, बड़े बड़े लोग भी इसे नहीं जान सकते हैं। ब्रह्मा और इंद्र जैसे भी धोखा खा जाते हैं। तो इस पर, इसी श्लोक में, इसी शब्द पर मैं पिछले बुधवार को सती जी की कथा को कह रहा था, और जब रामचरितमानस से इस कथा को प्रारंभ किया तो कुछ भक्तों को बहुत आनंद आया है। प्रवचन के बाद भी कुछ भक्त मिले, कहा कि इस प्रकार से रामचरितमानस चौपाई का गान होना रामचरितमानस का गान होना चाहिए और भगवान श्री रामचंद्र की इत्यादि लीला होनी चाहिए। तो जिन लोगों को इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र की लीला सुनने का में रस है, रामचरितमानस ग्रंथ का आस्वादन करना है, उन लोगों का मान रखते हुए, उन लोगों की जिज्ञासा को देखते हुए हम एक और नया प्रोग्राम प्रारंभ कर रहे हैं। यह प्रोग्राम प्रति एकादशी के दिन शाम को 8:30-9:30 प्रारंभ होगा और यह मीरा रोड में होगा प्रति एकादशी के दिन, और वहां पर रामचरितमानस ग्रंथ प्रारंभ किया जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे
हरे, हरे राम 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 हरे।
तो जिस भक्तों को श्रवण में रुचि है, कृपया करके अपने जो काउंसलर है, यहाँ के जो भक्त हैं, उससे एड्रेस ले सकते हैं बाद में। तो रामचरितमानस तो हम लेने ही वाले हैं प्रति एकादशी के दिन, इसलिए मैंने सोचा कि अब उसी दिन गान बजान होना चाहिए, यहाँ पर केवल भागवत हमें लिया जाए। तो हमने यह सुना था कि शिव जी और पार्वती जी अगस्त कुंभज ऋषि से कथा सुनकर वापस लौट रहे थे। त्रेता युग चल रहा था, भगवान श्री रामचंद्र सीता जी के विरह में बहुत आकुल व्याकुल हो चुके थे। शिव जी ने जब भगवान श्री रामचंद्र को देखा तो दूर से ही मन प्रणाम कर लिया। शिव जी ने जब मन ही मन प्रणाम किया तो अब जगत जननी है, प्रिय है, तो जान गई कि प्रभु प्रणाम कर रहे हैं। सती को बहुत मोह हुआ कि मेरे प्रभु किसको प्रणाम कर रहे हैं, एक व्यक्ति एक स्त्री के पीछे पागल हो चुका है, ऐसे पागलों को प्रणाम किया जा सकता है, इतना कामी व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता है। सती को यह मोह हुआ। तो अब शिव जी तो सर्वज्ञ हैं, सबके हृदय की बात को जानते हैं, अपनी पत्नी के हृदय की बात को जान ली और कहे, संशय क्यों करती हो, अगर तुम्हारे मन में संशय है तो परीक्षा करके देख लो। सती जी ने कहा कि परीक्षा, ठीक है परीक्षा करके देख लेती हूँ। शिव जी ने यह नहीं कहा कौन सी परीक्षा करना, लेकिन सती ने तो बहुत भारी परीक्षा कर ली। सती ने कहा ठीक है, शिव जी ने कहा मैं इस पेड़ के नीचे बैठा हूँ और तुम परीक्षा करके आओ, परीक्षा करके जब आओगी तब हम दोनों साथ में चलेंगे हमारे घर। तो जगत जननी माता पार्वती सती परीक्षा करने गई। परीक्षा क्या किया उसने, भगवान श्री रामचंद्र सीता जी के विरह में थे, बहुत ही आकुल व्याकुल हो चुके थे। तो सती जी ने सोचा कि मैं सीता का वेश धारण कर लेती हूँ। अब सती थी, वो कोई भी रूप बना सकती थी, तो सीता जी का रूप धारण कर लिया, बिल्कुल हूबहू सीता जी की तरह ही दिखने लगी। और उन्होंने सोचा कि अब जैसे ही मैं रामचंद्र के सामने जाऊंगी तो वे तुरंत कहेंगे कि सीते तुम आ गई, तुरंत परीक्षा हो जाएगी। तो अब सीता का वेश धारण करके सती गई। जब भगवान श्री रामचंद्र इस प्रकार से खोज रहे थे, लता पता पेड़ पौधे पक्षियों को पशुओं को पूछ रहे थे कहाँ है सीता को देखा, सीता को देखा, तो दूर से यह सती आ रही थी सीता। अब सीता जी का वेश ही लेकर आ रही थी, उसका रूप ही बनाकर आ रही थी। तो भगवान श्री रामचंद्र ने दूर से ही प्रणाम किया और कहा कि माता आप इस घोर जंगल में घोर वन में क्या कर रही हो। बस इतना ही सुनना था, सती के मन में संदेह मिट गया। संदेह तो तुरंत मिट गया, लेकिन अब तो टेंशन आने लगा कि मैंने किसकी परीक्षा कर ली। तो अब ये तो मन ही मन में सोच रही है कि ये तो भगवान की परीक्षा ले। तुरंत भगवान श्री रामचंद्र बोले, माते आप यहाँ क्या कर रहे हो और भोलेनाथ को कहाँ पर छोड़कर आ गई? लगता है वो आपसे अलग दोनों घूम तो नहीं गए हो। तो इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र ने कहा। और जब इस प्रकार से सती जी ने भगवान की परीक्षा ले ली, परीक्षा लेकर जब वापस आई शिव जी के पास, तो शिव जी ने पूछा, हंसकर कहा कि क्या तूने परीक्षा ले ली? सती जी ने कहा हाँ ले ली। अब परीक्षा लेने की क्या जरूरत है, मैं वहां पर गई और जाकर लगा कि नहीं, मेरे पति जो कहते हैं और वास्तव में यह भगवान ही है, परीक्षा परीक्षा मैंने नहीं लिया। अब शिव जी मन ही मन में हंसने लगे। शिव जी तो जान गए थे अपने समाधि में बैठकर कि ये गई है और सीता का रूप बनाई है, सीता का रूप बनाकर परीक्षा लेने गई है, लेकिन अपने पति देव को भी सच सच बात नहीं बताई। देखिए रामचरित मानस की यह पहली शिक्षा है, स्त्री कहां तक गिर सकती है ये जगत जननी माता पार्वती सिखा रही है। भोलेनाथ पूछ रहे हैं, अब उसमें कुछ बता दिया होता तो भोलेनाथ डंडा लेकर मारने तो नहीं वाले थे, लेकिन देखिए कितना अहंकार होता है, कितना मद होता है स्त्री को, और बात बात में झूठ बोलना तो हाथ का खेल है। हमारे गुरु महाराज तो कहते हैं कि स्त्रियों के आंख में आंसू नहीं होता है, उसके हाथ में आंसू होता है, जब चाहे गिरा सकती है, जब चाहे। तो शिव जी तो जान चुके थे कि यह परीक्षा लेने गई है, लेकिन देखिए यह सती अपने पति देव से झूठ बोली। शिव जी मन ही मन हंस, अब जो पति होते हैं वास्तव में वे कभी अगर स्त्री झूठ भी बोले तो उसकी बातों को बाहर नहीं निकालते हैं। शिव जी मन ही मन हंसने लगे कि स्त्रियों का इस प्रकार से, वो तो जान देते स्त्री क्या, स्त्री जात क्या होती है, ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से यह स्त्री का निर्माण किया है वो जानते थे। मन ही मन में हंस कर चलने लगे वहां से। तात्पर्य यह है कि भगवान की लीला को देखकर सती भी मोहित हो गई, ब्रह्मा जी मोहित हो गए, इंद्र तक मोहित हो गए, तो मनुष्य की बात तो छोड़ दीजिए। वास्तव में भगवान को कोई साधारण व्यक्ति नहीं जान सकता है। भगवान को और भगवान की लीला को जानना है तो भक्ति के नेत्र से हम भगवान को जान सकते हैं। भगवान को बांधना बहुत मुश्किल है, भगवान को पकड़ना बहुत मुश्किल है, भगवान की लीला को जानना ये बहुत मुश्किल है, लेकिन गीता में भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति। हे अर्जुन, अगर मुझे जानना है, मेरी लीला को जानना है, मुझे समझना है, मुझे पकड़ना है, तो इस संसार के और कितने कितने साधन कर लो, चाहे तपस्या कर लो, चाहे व्रत करो, योग करो, समाधि करो, ध्यान करो, मुझे नहीं जान सकते हैं जब तक वो मेरी भक्ति नहीं करेंगे। क्योंकि भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। अगर भगवान को और भगवान की लीला को जानना है तो भक्ति के द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं। आप कहेंगे भगवान को हमें जानना है और भक्ति के द्वारा जानना है, तो भक्ति का अर्थ यही होता है भगवान के नाम का जप करना और भगवान की कथा सुनना। ये 88,000 ऋषि मुनि भगवान की लीला को जानना चाहते थे, इसलिए कहते हैं कृपया करके आप हमें कथा सुनाइए। वयम तु न वितृप्याम, इस कथा से हम तृप्त नहीं होंगे। वयम तू नवित रुपया म उत्तम श्लोक विक्रमे, भगवान के पराक्रम भगवान की लीला सुनने से हम तृप्त नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यत श्रुणताम यत ज्ञानम स्वाधु स्वाधु पदे पदे, क्योंकि भगवान की लीला कथा में पद पद में पग 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 में एक एक सेकंड में आनंद ही आनंद आता है। इसलिए कृपया करके हमें कथा सुनाइए। जब इस प्रकार से 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा कि आप हमें कथा सुनाइए, तो मान लो सुध गोस्वामी ने कहा कि मैं आपको कितनी कथा सुनाऊंगा? कथा सुनने के लिए तुम्हारे पास समय है? ये हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। मान लीजिए 88,000 ऋषि मुनियों की तरह हमारी भी जिज्ञासा हो जाए कि हम कथा सुने, तो पहले तो यह देखना होगा कि समय है हमारे शेड्यूल में। तो सुध गोस्वामी ने यही प्रश्न पूछा, यह कलयुग है और कलयुग में बहुत कम समय कम उम्र है, कहां पर समय है तुम्हारे पास? और तुम सब ब्राह्मण हो और ब्राह्मणों का नित्य कर्म होता है कि वह यज्ञ करे, हवन करे, होम करे, मंत्र पढ़े, तो तुम्हारे पास समय कहां पर है कथा सुनने के लिए? 88,000 ऋषि मुनि कहते हैं, हमें पता है यह कलयुग आ चुका है, कलयुग प्रवेश कर लिया है। 88,000 ऋषि मुनि कहते हैं, कली मागत माग्याय क्षेत्रे स्मिन वैष्णवे वयम। हे सुध गोस्वामी, हम लोग जानते हैं कि कलयुग आ चुका है और कलयुग आ रहा है, इसके भय से ही हम सब लोग भाग भाग कर इस नैमिषारण्य क्षेत्र में आ चुके हैं। कलिम आगत आज्ञाय क्षेत्रे अस्मिन वैष्णवे वयम, वयम हम लोग इस क्षेत्र में नैमिषारण्य क्षेत्र में इसलिए आए हैं क्योंकि हम जान लिए कि कलयुग आ चुका है। ये जब कथा हो रही थी तब द्वापर युग चला गया और कलयुग का प्रवेश हो चुका था। तो जैसे ही हम लोग को पता चला कि कलयुग प्रारंभ हो रहा है, हम तुरंत दौड़कर इस नैमिषारण्य क्षेत्र में आ गए, क्योंकि हम यह साधारण क्षेत्र में नहीं बैठे, हम नैमिषारण्य एक पवित्र क्षेत्र में भगवान के धाम में बैठे हैं, इसलिए हमारे पास बहुत समय है। क्योंकि हे सुध गोस्वामी, कलयुग का प्रभाव इस संसार में सभी जगह पर रहता है, लेकिन कलयुग का प्रभाव भगवान के धाम में नहीं रहता है, और हम सब लोग भगवान के धाम में बैठे हैं, इसलिए हमारे पास बहुत समय। वास्तव में कलयुग की उम्र केवल 100 साल की है, लेकिन यह जो काल और अवधि है यह भगवान के धाम में लागू नहीं होती है। मान लीजिए इस संसार में माया का प्रभाव बहुत जोर से चल रहा है क्योंकि कलयुग है, लेकिन यही माया का प्रभाव भगवान के धाम में नहीं है। भगवान के धाम का अर्थ होता है जहां पर भगवान रहते हैं, भगवान अपनी लीला करते हैं, किए हैं, उस स्थान को भगवान का धाम कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो ये पूरा संसार भगवान का ही धाम है, भगवान की ही जगह है संसार। वास्तव में यह सारा संसार भगवान से ही प्रकट हुआ है, सब कुछ भगवान का है। और वास्तव में इस गली के और रास्ते के नाम देने हैं तो भगवान के नाम से ही देने चाहिए, लेकिन फिर भी संसार में कुछ लोग गांधी उद्यान लिखते हैं, जीजा माता पार्क लिखते हैं, क्या उनका नाम रखने से उनका हो गया? वास्तव में सब कुछ भगवान का है। रामलीला मैदान मलाड़ में है, ये ठीक है कि वास्तव में भगवान का, भगवान की लीला का ही यह मैदान है, लेकिन और सब का नाम डाल डाल कर बहुत गलती कर रहे हैं। तो देखा जाए तो यह संसार भगवान का ही है, लेकिन इस संसार में भी भगवान जहां पर अपनी लीला किए हैं, भगवान जहां पर लीला के हैं, जहां पर रहते हैं, जहां पर भगवान के अर्च विग्रह हैं, वे स्थान बहुत ही परम पवित्र हैं और उसे भगवान का धाम कहा जाता है। ऐसे भगवान के धाम में इस संसार के काल और समय का प्रभाव नहीं होता है। इस मुंबई जैसे शहर में जहां पर भगवान का धाम नहीं है, यहां पर माया का प्रभाव बहुत है, लेकिन अगर कोई वृंदावन चला जाता है, जगन्नाथपुरी, मायापुर या नैमिषारण्य, इस प्रकार से भगवान के धाम में अगर कोई चला जाता है तो वहां पर यह माया का प्रभाव नहीं होता है। माया का प्रभाव जहां पर भगवान नहीं है वहां पर होता है, जहां पर भगवान है, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार है। जहां पर सूर्य होता है वहां पर अंधकार होता है। अगर सूर्य चाहे भी कि मैं अंधकार के बीच में रहना चाहता हूं, लेकिन फिर भी यह संभव है। लेकिन क्योंकि जहां पर सूर्य उपस्थित, अरे अरे सूर्य उपस्थित होने की बात दूर रही, सूर्य जब आने की सोचता है तभी से यह अंधकार दूर हो जाता है। आप देखते हो बहुत बड़े पहाड़ से सूर्य बाहर नहीं आता है, लेकिन बाहर आने का जब समय हो जाता है तभी से यह अंधकार चला जाता है, और सूर्य जब बिल्कुल सिर पर आ जाता है तब अंधकार की बात ही दूर रही। ठीक उसी प्रकार भगवान को का जीवन में आने की बात तो दूर रही, भगवान का नाम और नामाभास आ जाने से माया बहुत दूर भाग जाती है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे
हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो भगवान का धाम, भगवान के धाम का महात्म्य, भगवान के धाम का सामर्थ्य किसी भी काल को बाधित नहीं करता है, किसी भी काल में बाधित नहीं होता है। आप देखेंगे जैसे नारद मुनि को दक्ष प्रजापति के द्वारा श्राप लगा था, पता है कौन सा? दक्ष प्रजापति ने नारद मुनि को श्राप दिया था क्योंकि दक्ष प्रजापति ने 10,000 पुत्र को एक साथ जन्म दिया। कथा जानते हैं? 10,000 पुत्र को जन्म दिया दक्ष प्रजापति ने, स्पेशल संसार की पुत्र की उत्पत्ति करने के लिए ही इनका जन्म हुआ था। एक साथ 10,000 को मैन्युफैक्चर किया, इसलिए उनका नाम दक्ष रखा गया। पुत्र उत्पन्न करने में दक्ष जो थे, 10,000 पुत्र का जन्म हुआ। दक्ष प्रजापति यह जानते थे कि बिना तपस्या के जीवन ठीक से नहीं जी सका जाता है, इसलिए 10,000 पुत्रों को कहा कि जाओ जंगल में, और जंगल में जाकर तपस्या करो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, तब जाकर तुम सृष्टि की उत्पत्ति आगे संसार कर सकते हो, विवाह इत्यादि। तो ये 10,000 पुत्र गए तपस्या करने के लिए वन में, और नारद मुनि का काम है प्रचार करना। बहुत बड़े इस संसार के सबसे बड़े प्रचारक है नारद मुनि। तो नारद मुनि तो नारायण नारायण करते हुए वहां पर पहुंच गए जहां पर दक्ष प्रजापति ने अपने 10,000 पुत्र को तपस्या करने के लिए भेजा था। तो 10,000 पुत्रों के सामने नारद मुनि रास्ते में मिले, और नारद मुनि ने केवल 10 बातें कही। 10 पहली बुझाई नारद मुनि ने, 10 बातें 10 शब्द पे वह 10,000 शिष्य भक्त बन गए, 10,000 पुत्र दक्ष प्रजापति के। नारद मुनि ने यही कहा कि इस संसार में एक ऐसा बिल है जिसमें कोई जाता है लेकिन वापस नहीं आता है। इस संसार में एक ऐसा चक्र है जो कभी नहीं रुकता है, ये सब कुछ आप जानते हो। इस संसार में एक ऐसी नदी है, नदियों उभयो वहां, इस संसार में ऐसी नदी है जो दोनों बाजू बहती है। इस प्रकार से नारद मुनि ने 10 प्रश्न पूछे और कहा कि जानते हो इसके बारे में? वो 10,000 पुत्रों ने कहा नहीं। तो तब जाकर वो कहते हैं कि क्या गृहस्थ जीवन बिताओगे, क्या संसार करोगे, उससे अच्छा है भजन करो। नारद मुनि ने 10 ही मिनट में 10,000 लोगों को भक्त बना दिया, 10,000 ब्रह्मचारी बन गए। अब दक्ष प्रजापति यह 10,000 पुत्रों को गृहस्थ बनाने के लिए पैदा किए थे, लेकिन ये 10,000 को ब्रह्मचारी बना दिए। दक्ष प्रजापति बहुत दुखी हुए, गए ब्रह्मा जी के पास, ये आपके पुत्र नारद जो है। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, और आप तो दक्ष हो, और मैन्युफैक्चर करो। तब दक्ष प्रजापति ने और 1,000 पुत्रों की उत्पत्ति की, और उत्पत्ति करके कहा, जन्म देकर कहा कि वन में जाओ और पहले तपस्या करो, और तपस्या करने के बाद गृहस्थ जीवन आप जी सकते हैं। तो ये 1,000 लोग गए, तपस्या किए, तपस्या करके जब वापस लौट रहे थे तो फिर से नारद मुनि मिल गए। नारद मुनि मिले और उनको भी भक्त बना दिया। ये दक्ष प्रजापति तो बहुत दुखी। हाँ, मुझे याद आ रहा है कि इस श्लोक के परपट में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात लिखे हैं कि दक्ष प्रजापति पुत्र उत्पन्न करने में दक्ष था, जैसे आज संसार के लोग, इस कलयुग के लोग पुत्र उत्पन्न करने में बहुत दक्ष है। जब चाहे कभी चाहे पुत्र उत्पन्न करते रहते हैं बिना सोचे समझे। इस संसार में भी दक्ष प्रजापति जैसे कई सारे लोग हैं जो पुत्र उत्पन्न करने में दक्ष हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत में आने वाले भक्तों को चाहिए कि वह नारद मुनि की तरह प्रचारक बने, कि संसार के जो पुत्र उत्पन्न करने में कितने भी बड़े दक्ष क्यों ना हो जाए, नारद मुनि की तरह प्रचार करके उन दक्षों के पुत्रों को भक्त बना देना चाहिए। प्रभुपाद जी आज्ञा देते हैं अपने भक्तों को, भले दक्ष है तो क्या हो गया, नारद मुनि की तरह प्रचारक बनना चाहिए ताकि भक्त बना सके। तो इस प्रकार से जब नारद मुनि ने इसको भी भक्त बना दिया, तब दक्ष प्रजापति ने नारद मुनि को श्राप दिया कि अरे दुष्ट, तुम मेरे पुत्र को जितना उत्पन्न जन्म दे रहा हूं उतनों को भक्त बना रहे हो, ब्रह्मचारी बना रहे हो तुम्हारी तरह। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक मिनट के लिए केवल एक जगह पर रह सकते हो, एक जगह पर नहीं रहने का उसने श्राप दे दिया। तुम निरंतर एक स्थान पर कभी नहीं रह सकते हो, अब रहोगे तो उपदेश करोगे। लेकिन फिर भी दक्ष प्रजापति श्राप देकर भी दुखी ही थे, भक्त बना दिया। फिर बाद में कथा है, दक्ष प्रजापति गए ब्रह्मा जी के पास, अब क्या करूं, ये आपका पुत्र भक्त बनाते ही जा रहा है। तो ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर उपाय दिया, तुम पुत्र उत्पन्न कर रहे हो और ये नारद भक्त बना रहा है, अब लड़कियों को जन्म दो, कहां से भक्त बनाएगा। और लड़कियों को ब्रह्मचारी भी कैसे बना सकता है। तब दक्ष प्रजापति ने सोचा ये ठीक बात है। तब दक्ष प्रजापति ने 60 कन्या को जन्म दिया, भागवत में बहुत वर्णन है, और उसमें ही दीति अदिति और कश्यप मुनि के साथ विवाह, ये सब आगे वंश परंपरा है। तात्पर्य यह है, नारद मुनि को श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति ने कि एक स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं टिक सकते हो, ये नहीं रह पाते थे नारद मुनि, घूमते ही रहते थे, परिभ्रमण, परिव्रजा का आचार्य। लेकिन फिर भी देखा गया है भगवान की लीला में, नारद मुनि को यह श्राप होने के बाद भी जब नारद मुनि द्वारका में आते थे, भागवत में वर्णन है नारद मुनि द्वारका में निरंतर सालों साल रहते थे। तो यहां पर यह प्रश्न नहीं होता है कि दक्ष प्रजापति ने तो श्राप दिया था नारद मुनि को, लेकिन फिर भी नारद मुनि एक ही जगह पर सालों साल क्यों रह सकते हैं, क्योंकि नारद मुनि भगवान के धाम में रहते हैं। इस संसार का जो भौतिक श्राप है, भौतिक काल है, भगवान के धाम में लागू नहीं होता है, और कई जगह पर नारद मुनि खड़े रहते तो वो नहीं खड़े रह पाते, लेकिन भगवान के धाम में इस संसार का काल और नियम लागू नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार आप देखते हैं, अगर कोई बहुत बड़ा पापी है तो मरने के बाद उसकी दुर्गति होती है, लेकिन अगर बहुत बड़ा पापी क्यों ना हो, भगवान के धाम में काशी नाम के पुण्य क्षेत्र पर भगवान के धाम में अगर उसका उसकी मृत्यु होती है तो उसकी दुर्गति नहीं होती है। तो ये है भगवान के धाम की महिमा, भगवान के धाम में ये भौतिक जो कलमश है वह नहीं सताते। ठीक उसी प्रकार यह नैमिषारण्य जो धाम है, ये भी भगवान का धाम है, और इस भगवान के नैमिषारण्य नामक धाम में यह काल की जो अवधि है वो बाधित नहीं करती। अब देखिए, आपने इसी भागवत के अगले श्लोकों में सुना कि 88,000 ऋषि मुनि सहस्त्र सम मासत एकदा तु मुनय प्रातर हुत हुताग्नय, क्या है, सहस्त्र सम मासत, 1,000 वर्ष यज्ञ करने का अनुष्ठान करके 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे, ये आपने सुना। यहां पर प्रश्न होता है, कलयुग आ चुका था और कलयुग में जीव की उम्र केवल 100 साल की है, तो 1,000 वर्ष का अनुष्ठान क्यों किया। अब वे लोग 100 साल से तो ज्यादा जी नहीं सकते हैं क्योंकि कलयुग है, फिर भी 1,000 वर्ष, क्योंकि वे लोग नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में बैठे हैं। नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में बैठकर व्यक्ति हजारों हजारों साल तक जी सकता है, और कुछ भक्त तो यहाँ तक कहते हैं कि ये लोग 88,000 ऋषि मुनि ने कहा कि सूत गोस्वामी आप हमें यह मत कहो कि हमारे पास समय नहीं है, आप टेंशन मत लो, हमारी मृत्यु होने वाली ही नहीं है, क्योंकि संसार में मृत्यु देने वाला जो देवता है यमराज जी हमारे बाजू में बैठे, देखो यमराज जी हमारे जब तक बाजू में है तब तक किसी की मृत्यु नहीं हो सकती है, आप कथा सुनाइए। ये 88,000 ऋषि मुनि कथा सुनने के लिए यमराज जी को भी बुला लिए थे, और जब तक ये कथा चली तब तक किसी की मृत्यु नहीं हुई इस धराधाम पर, केवल कथा सुनने के लिए। इसलिए कृपया करके आप हमें कथा सुनाइए, क्योंकि हम यह पुण्य पवित्र क्षेत्र में बैठे हैं और इस संसार का भौतिक नियम इस क्षेत्र को लागू नहीं होता है। वास्तव में हमें भी ऐसे क्षेत्रों का लाभ लेना चाहिए, भगवान के धाम का लाभ लेना चाहिए, ये बहुत ही बड़ी और परम भक्ति। इसलिए हमारे इस्कॉन से प्रति दिवाली के अवसर पर दिवाली में 10 दिन के लिए हम छुट्टियों में ऐसे धाम में जाते हैं। तो इस बार हम लोग जगन्नाथपुरी, मायापुर, रामेश्वर और तिरुपति यह सब जगह पर जा रहे हैं। तो इनमें से जितने भी लोगों को आने की इच्छा है तो कृपया करके हमारे यहाँ के भक्तों का संपर्क करें, अपना नाम लिखा दीजिए और देख लीजिए कितना टिकट का भाड़ा है क्या है, तो आप सब हम सब मिलकर भगवान के धाम में जा सकते हैं। और कम से कम हम पूरा जीवन तो नहीं रह सकते हैं, लेकिन कम से कम कुछ दिनों के लिए निरंतर 24 घंटा भगवान के स्मरण और भगवान की भक्ति का लाभ ले सकते हैं। तो कलिम आगत माज्ञाय क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षणा हरे। हे सुत गोस्वामी, आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग हजारों साल तक जीने वाले हैं, हमारे पास बहुत बहुत समय है, इसलिए आप हमें कथा सुनाइए। सक्षणा हरे, अगर आप हमें कथा नहीं सुनाते हो तो हमारा एक एक पल एक एक युग की समान बीतेगा, और अगर आप हमें कृष्ण कथा सुनाओगे तो हमारा यह हजारों हजारों वर्ष कैसे बीत जाएगा हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए कृपया करके आप हमें कथा सुनाइए। इसके परपट में प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर लिखे हैं कि सतयुग जो है उसे स्वर्ण युग कहा जाता है, और सतयुग में उस स्वर्ण सोने के युग में व्यक्ति की उम्र 100,000 साल की थी, 100,000 साल तक वह जी सकते थे, और 100,000 साल में भगवान का ध्यान करके आत्म साक्षात्कार कर सकते थे और भगवान को प्राप्त हो सकते थे। इसलिए सतयुग को स्वर्ण युग कहा जाता है, और उसके बाद जो युग आया जिसे त्रेता युग कहते हैं, त्रेता युग रजस युग चांदी का युग है, सिल्वर युग सतयुग से थोड़ा कम, क्योंकि त्रेता युग में उम्र केवल 10,000 साल की ही है, और 10,000 साल में यज्ञ हवन इत्यादि करके आत्म साक्षात्कार करके भगवान के धाम को प्राप्त किया जा सकता था। और तत्पश्चात जो युग आया जिसका नाम है द्वापर युग, उसे प्रभुपाद जी ताम्र युग कहते हैं। अब देखा, सतयुग को सोने का युग कहा, द्वापर युग को चांदी का युग, त्रेता युग को चांदी का युग कहा और द्वापर को तांबे का युग कहा, क्योंकि इस युग में जीव की उम्र केवल 1,000 साल की है, और 1,000 साल में भगवान की अर्च विग्रह की पूजा सेवा करके वह भगवान के धाम को प्राप्त हो सकता है। लेकिन कलयुग, प्रभुपाद जी वहां पर लिखे नहीं कि कलयुग कौन सा युग है, लेकिन प्रभुपाद जी यही लिखे कलयुग में बहुत कम उम्र है, बहुत कम अवकाश है, बहुत कम चांसेस है आत्म साक्षात्कार करने का और भगवान को प्राप्त करने का। तो आज मैं मन ही मन में सोच रहा था जब ट्रेन से आ रहा था, प्रभुपाद जी ने तीनों युगों का नाम लिखा, सतयुग सोने का युग है और त्रेता युग चांदी का युग है और द्वापर युग तांबे का युग है। मन ही मन सोच रहा था प्रभुपाद जी ने क्यों नहीं लिखा, फिर सोचा प्रभुपाद जी ने हमारे ऊपर छोड़ दिया होगा, तो मैं सोचा हाँ ठीक है, बहुत ही ठीक बैठ रहा है, सतयुग जो है वह सोने का युग है, बहुत अवकाश है भगवान की भक्ति करने में, त्रेता युग है वह चांदी का युग है, बहुत थोड़ा कम अवकाश है भगवान को प्राप्त करने में। द्वापर युग तांबे का युग है, उससे भी थोड़ा कम अवकाश है, लेकिन ये कलयुग जो है ये प्लास्टिक का युग है। मेरे मन ही मन में ये बात आ रही थी। और वास्तव में देखा जाए कलयुग में 80-90% प्लास्टिक ही यूज होने लगा है। पहले के जमाने में जिस जगह पर सोने चांदी और तांबा यूज होता था, वह जगह पर आज कलयुग में प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिख रहा है। ग्लास है तो प्लास्टिक का, बाल्टी है तो प्लास्टिक की, सब प्लास्टिक का। यहाँ मोटर गाड़ी भी अब आ रहा है पेपर में, ये फाइबर की प्लास्टिक की भी मोटर गाड़ी और स्कूटर बन रहे हैं। प्लास्टिक का युग है, ये चश्मे के ग्लास भी प्लास्टिक है, सब कुछ प्लास्टिक का बन रहा है। तो वास्तव में ये कलयुग जो है वो और सब युगों की तुलना में बहुत बेकार है, और क्योंकि बहुत कम उम्र है इस कलयुग में, केवल 100 साल दिए गए हैं, और इस 100 साल में आत्म साक्षात। प्रभुपाद जी लिखे हैं कि 100 साल में अब क्या व्यक्ति, क्या 100 साल में वो विवाह, सबसे पहले बचपन में 10 साल चला जाएगा, विवाह करेगा, बच्चों को पालेगा, तब तक तो बूढ़ा होकर मर जाएगा, कहाँ वो आत्म साक्षात्कार कर सकता है, भजन कर सकता है। वास्तव में जब द्वापर युग, राजा परीक्षित जो पांडवों के एकमात्र वंशज थे, द्वापर युग में जब थे और उसे पता चला कि कलयुग आ रहा है, महाराज परीक्षित समर्थ थे, अपने प्रभाव से कलयुग को आने नहीं देने वाले थे, बिल्कुल कलयुग को आज्ञा दे दी कि तुम्हें नहीं आना है। जैसे सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग आता है, कलयुग को बिल्कुल निकाल ही दिए थे, डायरेक्ट सतयुग आना चाहिए। महाराज परीक्षित ने कलयुग को बिल्कुल ना कर दिया, क्योंकि कलेर दोषो निधे राजन, इस कलयुग में दोष ही दोष है। और महाराज परीक्षित चाहते तो इस कलयुग को आने नहीं देते थे, लेकिन महाराज परीक्षित ने देखा कि कलयुग में जितने दोष हैं उससे ज्यादा कलयुग में गुण भी है। कलयुग में दोष बहुत है, जितने भी युग है सभी युगों की तुलना में कलयुग में बहुत दोष है। सतयुग में एक व्यक्ति भी झूठ कभी नहीं बोलता था, कभी किसी की इच्छा भी हो गई कि मैं झूठ बोलूं, फिर वो झूठ नहीं बोल सकता था। लेकिन आज अगर किसी की इच्छा हो कि मैं सच 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 बोलूं, फिर भी वो झूठ निकल ही जाता है। आज ही मैं ट्रेन से, ये तो रोज का अनुभव है लेकिन ताजा अनुभव दे रहा हूं, बोरीवली से मैं ट्रेन में बैठा, एक व्यक्ति का फोन आया किसी को, एक लड़का खड़ा था गेट के पास, पूछा होगा, सुना तो नहीं लेकिन पूछा होगा कि तुम कहां पर हो। अब बोरीवली से ट्रेन चली भी नहीं थी, वो कहता है मैं कांदिवली बस स्टॉप पर पहुंच चुका हूं, मुझे कौन सी बस पकड़नी है बताओ। अगर वो बोला होता कि मैं ट्रेन में हूं तो वो फोन से बाहर निकलकर थप्पड़ तो नहीं मारता। कभी कभी ऐसा हो जाता है, झूठ बोल बोल कर इतनी आदत पड़ जाती है कि सच बोलना भी चाहे व्यक्ति, फिर भी झूठ निकल ही जाता है, ऐसा होता है। और मोबाइल फोन वालों के पास तो बहुत ये देखे जाते हैं, गोरेगांव में है तो कहते हैं मैं मलाड में पहुंच गया हूं। खैर, तो सभी युगों की तुलना में कलयुग में भजन करना बहुत ही मुश्किल है, आत्म साक्षात्कार करना अवकाश बहुत कम है। महाराज परीक्षित इसे आने नहीं देने वाले थे, लेकिन महाराज परीक्षित ने देखा इसमें एक गुण जो है बहुत ही सुंदर है। वैसे तो यह कलयुग दोषों का खजाना है, दोषों का निधि सागर है, लेकिन कितना देव कीर्तनस्य, लेकिन इस कलयुग में गुण क्या है, महाराज परीक्षित ने गुण क्या देखा, देखा कि इस कलयुग में भले कम उम्र है, केवल 100 साल है, उसमें भी पत्नी बच्चे ये वो सब झमेला है, लेकिन इस झमेले में रहते हुए भी अगर कोई कीर्तना देव कीर्तनस्य, अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता है तो मुक्त संग परम व्रजेत, केवल भगवान का नाम लेकर वह जिस स्थान में है, जिस जगह पर है, ऑफिस में है, घर पर है, पत्नी बच्चों के साथ जिस कहीं भी जगह पर है, वहां पर भी केवल भगवान का नाम लेकर मुक्त संघ परम व्रजेत भगवान को प्राप्त हो सकता है। इस गुण को देकर महाराज परीक्षित ने कलयुग को आमंत्रण देकर बुला लिया कि आओ, क्योंकि इस कलयुग में रहने वाले लोग केवल भगवान का नाम लेकर भगवान को प्राप्त कर सके। हरे
कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे
हरे राम 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 हरे।
क्योंकि और सब युग में भगवान को प्राप्त करने के लिए 1,00,000 साल तक ध्यान करना पड़ता है, 10,000 साल तक यज्ञ करना पड़ता है, 1,000 साल तक पूजा अर्चन करनी पड़ती है, लेकिन कलयुग में 100 साल में भी केवल 16 माला एक दिन जप करने से भगवान मिल जाते हैं। वास्तव में देखा जाए, हम जैसी आलसियों की दृष्टि में देखा जाए तो यह कलयुग ही स्वर्ण युग है और यह स्वर्ण युग केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हुआ है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने हमें यह हरिनाम दिया है और इस हरिनाम को लेकर भगवान के नाम को, केवल भगवान के नाम का उच्चारण करके हम भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए सभी भक्तों को चाहिए कि इस कलयुग में और कुछ सोचे बिना कि मैं ये हवन यज्ञ तपस्या ये वो कुछ करूंगा, भगवान का नाम ले। भगवान का नाम ले लेकर धीरे धीरे व्यक्ति के हृदय में शुद्धता पवित्रता आएगी और भगवान की कथा सुने, ये दोनों करने से एक ना एक दिन कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति और कृष्ण का धाम प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्णा। तो इस प्रकार से यहाँ श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 21 श्लोक समाप्त हुए। अब केवल इस अध्याय के 2 श्लोक बाकी हैं। यहाँ तक 5 प्रश्न हुए हैं, फिर अगले बुधवार को सब लोग याद करके लाइए। 1 प्रश्न बाकी है, 6ठा प्रश्न अगले बुधवार को सुद्गोस्वामी को पूछेंगे। हरे कृष्णा। आप सबसे क्षमा याचना कि आज हमें आने के लिए यहाँ पर बहुत लेट हो गया, लेट प्रवचन शुरू हुआ इसलिए लेट समापन हुआ, लेकिन अगले बुधवार से प्रयास करेंगे 8:15-8:30 बजे प्रवचन प्रारंभ हो जाए। हरे कृष्ण। अनाउंसमेंट।